मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है।
मित्र, क्या आपके जीवन में निराशा है? घबराइए नहीं, क्योंकि कार्यक्रम महिमा के वचन में आपके लिए आशा है। जी हाँ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए मधुर गीत से परमेश्वर की स्तुति करते हुए कार्यक्रम का आरंभ करें। श्रोता, कभी आपने यह सोचा है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं, या विज्ञान इनके द्वारा बड़े से बड़े काम करवा सकता है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे ही रोचक बात बताती हूँ। अब कॉकरोच यानी तिलचट्टा को ही ले लीजिए, जिसे देखकर प्रायः हर कोई नाक भौं सिकोड़ने लगता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो डर कर कुर्सी पर भी चढ़ जाते हैं, है ना? आपको बड़ा आश्चर्य होगा यह सुनकर कि यह छोटा सा कीड़ा भविष्य में सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करने वाला है। दरअसल इस बात की जानकारी जापान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक प्रयोग से मिली है। मैं आपको यह बता दूं कि टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर हाइजिंग नस्ल के कॉकरोच यानी तिलचट्टा की पीठ पर पाइजो इलेक्ट्रिक फाइबर का एक छोटा टुकड़ा लगाया। असल में पाइजो इलेक्ट्रिसिटी कुछ पदार्थों की विशेषता होती है, जिसके द्वारा वे संकुचित होने पर विद्युत उत्पन्न करते हैं, और जब कॉकरोच चलता है तो उसका हर कदम पाइजो इलेक्ट्रिक फाइबर को संकुचित करता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। विशेषज्ञों के अनुसार तो कॉकरोच के चलने से फाइबर का एक छोटा सा टुकड़ा 10 मिलीवॉट बिजली उत्पन्न कर सकता है, और इस तरह से 100 फाइबर भी एक साधारण डिवाइस या कहें यंत्र को चलाने लायक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषज्ञ अब कॉकरोच के दिमागी कोशों पर इलेक्ट्रिक सिमुलेशन यानी विद्युत अनुरूपण प्रवाहित कर कुछ समय के लिए उसे वश में करने का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद ये कॉकरोच प्रभावी गुप्तचर की भूमिका निभाने योग्य हो जाएंगे, क्योंकि उनके सूंघने की क्षमता अधिक होती है और इससे वे किसी भी विस्फोटक सामग्री का आसानी से पता भी लगा सकते हैं। विशेषज्ञ कॉकरोच के दिमागी कोशों को प्रभावित कर उनकी चाल पर काबू पाना चाह रहे हैं, ताकि उसके बाद उन्हें मनचाही दिशा में घुमाया जा सके। फिर तिलचट्टों की एक फौज तैयार होगी, जिस पर किसी को शक भी नहीं होगा, पर वे जबरदस्त गुप्तचर साबित होंगे। तो श्रोता, है ना ये रोचक बात? इसके साथ ही श्रोता, एक तरफ तो हम यह देखते हैं कि वैज्ञानिक दुनिया के छोटे से छोटे जीव को भी इंसानी प्रयोग के लिए तैयार कर रहे हैं, किंतु दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि कई एक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु, जानवर इत्यादि तो मानो दुनिया से गायब ही होते जा रहे हैं। अब आर्कटिक प्रदेश की ही बात ले लीजिए। पिछले दिनों यह बात सामने आई कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तपन के कारण आर्कटिक प्रदेश में पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू सहित कई दूसरे जानवरों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। US सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अध्ययन के आधार पर यह बात सामने आई है कि इस इलाके में बर्फ के पिघलने से कम 17 जानवर विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। इनमें कस्तूरी बैल या मस्क ऑक्सिन, ध्रुवीय लोमड़ी, वॉलरस और सील की 4 प्रजातियां शामिल हैं। आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आर्कटिक में समुद्री हिम का स्तर 2007 से लगातार घटते हुए अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया है, और फिर यह संभावना जताई गई है कि आने वाले 10 वर्षों के भीतर आर्कटिक में गर्मी के मौसम में हिम का नामोनिशान मिट सकता है। यह भी पता चला है कि उचित आवास और भोजन के स्रोतों की कमी के कारण आर्कटिक के जंतुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। इन प्रजातियों पर अपने भक्षकों और रोग पैदा करने वाले पैथाजोन से भी खतरा है। अध्ययन रिपोर्ट में यह चिंता प्रकट की गई है कि यदि यहाँ तेल उत्खनन बंद नहीं किया गया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसलिए यदि जल्दी ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर लगाम नहीं लगाया जाए तो स्थिति और भयावह हो सकती है और कई दूसरी प्रजातियों का अस्तित्व भी संकटग्रस्त हो सकता है। इसके साथ ही श्रोता, मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताना चाहूँगी, जो है स्कूटर से चलने वाली आटा चक्की के विषय में। जी हाँ, स्कूटर चलित आटा चक्की चलाने वाली तकनीक खोज निकालने का श्रेय जाता है महाराष्ट्र के जलगांव निवासी शेख जहांगीर को। वैसे तो पेशे से वे एक पेंटर हैं, वे पढ़ लिख नहीं सकते, किंतु अद्भुत खोज ढूंढने वालों में उनका भी नाम है। इस कार्य को करने के लिए उनकी पत्नी की परेशानियां उनकी प्रेरणा बन गईं, क्योंकि लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण गेहूं की पिसाई में कठिनाई होती थी। इसलिए जहांगीर ने कबाड़ी बाजार से एक आटा चक्की और एक पुराना स्कूटर खरीदा, फिर स्कूटर को गैस से चलने योग्य बनाया। आपको बता दूं कि उनके इस प्रयास से 1 किलोग्राम गैस से 4 घंटे आटा चक्की चलता है। और हाँ, जहांगीर को इस जुगाड़ तकनीक को बनाने में केवल 3,500 रुपये का खर्च आया। आशा है श्रोता, इन जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे।
Thank you. अक्सर ऐसा ही होता है जब किसी परिवार के सदस्यों में, मित्रों, पड़ोसियों में या दो दलों में किसी बात को लेकर विवाद होता है तो लोग आपसी मेल भाव और भाईचारा भूलकर आपस में भिड़ जाते हैं। जब लड़ाई अधिक बढ़ जाती है तो वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या फिर अपने उस आपसी दुश्मनी के कारण एक दूसरे को मार डालने से भी पीछे नहीं हटते। जी हाँ, नफरत और द्वेष और कड़वाहट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, प्रेम। प्रेम के द्वारा ही टूटते रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं और उनमें सुलह हो जाती है और लोग मेल प्रेम से एक साथ रह सकते हैं। जरा आप भी सोचिए, यदि आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में फूट है, पति पत्नी या भाई भाई या सास बहू में आपस में प्रेम नहीं है, तो यह इलाज आपके लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है। कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, एक साथ तभी रह सकते हैं जब उनमें आपस में प्रेम है, उनके बीच संबंध ठीक हैं। मित्रता की यही पहली आवश्यकता है। प्रेम ही वह चीज़ है जो लोगों को आपस में जोड़ता है, एक दूसरे से मिलाता है। प्रेम की कमी के कारण ही प्रतिदिन हमें अखबारों में हिंसा और लड़ाई झगड़े और हत्याओं की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। मित्रता की दूसरी आवश्यकता है विश्वास और भरोसा। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें मित्रता को बल प्रदान करती हैं। यदि दो मित्रों में विश्वास और भरोसा नहीं होगा तो उनके बीच प्रेम भी नहीं पाया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी पर तभी विश्वास और भरोसा रखेगा जब वह उससे प्रेम करता है और उसका उल्टा भी उतना ही सही है। यूं कहा जाए कि ये एक दूसरे से कड़ी के समान परस्पर जुड़े होते हैं। प्रिय मित्र, इसी के समान तीसरी मुख्य आवश्यकता है एक दूसरे के विचारों को समझना या दोनों के विचारों की समानता। यदि दो मित्रों में दोनों के बीच विचारों में समानता नहीं है या दोनों में पसंद और नापसंद एक नहीं है तो वे एक साथ नहीं रह सकते। और इससे जुड़ी दूसरी बात जो मित्रता की चौथी आवश्यकता है वह है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे का आदर करना। यह भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि यदि दो मित्र या पति पत्नी या घर के अन्य सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का कदर ना करें या महत्व ना दें या एक दूसरे का आदर ना करें तो उनके बीच कटुता या कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। यह उनके बीच के संबंध को बिगाड़ सकती है। अगली बात अर्थात पांचवी आवश्यकता जो मित्रता को मजबूती प्रदान करती है वह है सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी के लिए मित्रों के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी को किसी से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। इसकी कमी के कारण मित्रों में गलतफहमी और दरार उत्पन्न हो जाती है। बाद में इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। जी हाँ, मित्रता की छठी आवश्यकता सबसे अहम और जरूरी है। वह है साथ साथ रहना, एक साथ दूसरे के साथ समय व्यतीत करना। इस आवश्यकता के बिना दो मित्रों में या पति पत्नी में या परिवार के अन्य सदस्यों में प्रेम विकसित नहीं होता। ना वे एक दूसरे को जान पाते हैं और ना ही विश्वास और भरोसा उनमें बढ़ पाता है। इसलिए चाहे हमारा कितना भी व्यस्त जीवन हो, चाहे हमारे अंदर कितने भी कामों की जिम्मेदारियां हों, हमें अपने प्रियजनों के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, दुख सुख की बातों को आपस में बांटना चाहिए। यदि कोई समस्या आ जाए तो मिलकर उन्हें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय मित्र, यही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे बीमार रिश्तों को इलाज करते हैं और उनमें नया जीवन और मजबूती प्रदान करते हैं। हो सकता है कि पहले आप इन सबसे अनजान थे, मगर अब इनका उपयोग अपने जीवन में जरूर करें। परमेश्वर इसमें आपकी सहायता करेंगे क्योंकि वे एक सच्चे प्रभु हैं। वह हमें मित्र का दर्जा देना चाहते हैं, हमें मित्र बनाना चाहते हैं। उनमें सबसे मुख्य गुण है कि वे प्रेमी प्रभु हैं, वे सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु हैं और उनका वचन और उनकी सारी प्रतिज्ञाएं भी सच्ची हैं। हम उन पर भरोसा रख सकते हैं। वे हमारे साथ हमेशा रहना चाहते हैं, उनका यह वादा है। वे कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी है? हियाव बांध और दृढ़ हो, न डर और न हताश हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। यहोशू अध्याय 1:9। और प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मत्ती अध्याय 28 पद 20। प्रिय मित्र, मित्रता निभाने का गुण सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है और उनको अपने जीवन में लागू करना हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन्हें अपनाएं या छोड़ दें। यदि हम इन्हें अपनाते हैं तो हम आशीषित जीवन के भागीदार बनते हैं और नहीं तो इनसे हम वंचित हो सकते हैं। क्या आपको याद है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और उसे अपना मित्र बनाया था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? जी हाँ, उसका नाम इब्राहिम था। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, उसे अपना मित्र बनाया और उससे वाचा बांधी और उस वाचा का चिन्ह उन्होंने इब्राहिम को बनाया। परमेश्वर द्वारा इब्राहिम के साथ बांधी गई वाचा अनुग्रह की वाचा थी, जिसके तहत वह संसार के लोगों को आशीष देना चाहता था और उनको उद्धार देना चाहता था। प्रिय मित्र, क्या आप जानते हैं कि यह वाचा क्या है? वाचा दो पक्षों के बीच किया गया एक समझौता है जिसमें प्रतिज्ञा और दायित्व और जिम्मेदारियां रहती हैं। जब वाचा बंध जाती है तो उसका एक चिन्ह भी रखा जाता है जिससे उस वाचा को पक्का किया जाता है या जिसके द्वारा उस वाचा को पक्का समझा जाता है। दोनों पक्षों के बीच यह समझौता होता है कि वे उस वाचा के नियमों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में ईमानदार और वचनबद्ध रहेंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण मसीही विवाह है, जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने और सच्चे व ईमानदार और विश्वासयोग्य बने रहने का वचन देते हैं और इस नए रिश्ते या संबंध को पक्का करने के लिए अंगूठी पहनाई जाती है जो इस वाचा या समझौते का चिन्ह होता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम से जो अनुग्रह की वाचा बांधी उसको पक्का बनाने के लिए उन्होंने उसे चिन्ह ठहराया और कहा, जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरा उत्तराधिकारी होगा। बाद में उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी दी, देख मेरी वाचा तो तेरे साथ है और तू कई जातियों का मूल पिता होगा। तेरा नाम अब से अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 4 और 5। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम के वंश से उत्पन्न हुआ। उसने सारी मानव जाति के लिए अपना लहू कलवरी के क्रूस पर बहा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त करे और इब्राहिम उन सब विश्वासियों का पिता ठहरे। जो वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधी उसको उसने यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया। लेकिन ध्यान दें, इब्राहिम की आशीष तब हमें मिलती है जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। इब्राहिम विश्वासियों का पिता जरूर कहलाता है मगर वह मुक्तिदाता नहीं है। वह तो मात्र उस वाचा का चिन्ह है जो परमेश्वर ने सारी मानव जाति के उद्धार के लिए ठहराई थी। सिर्फ यीशु मसीह उद्धार करता है। उसको अपने जीवन में आने दें क्योंकि वह आपसे कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ को सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20। क्या आप परमेश्वर से मित्रता करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो आप उस वाचा की आशीष के हकदार बन सकते हैं जिसका चिन्ह इब्राहिम था। परमेश्वर आपको आशीष दे।
हर जख्म तेरे लब से मेरा धुल जा रहा, हर जख्म तेरे लब से मेरा धुल जा रहा, तेरे तसल्ली पा रहा, हर जख्म तेरे लब से मेरा धुल ही जा रहा। बेखबर हो लोग ये जीते जहां में, खबर वो लोग ये जीते जहां में है जो नाम तेरा ले यहाँ वो राह पा रहा जो नाम तेरा ले यहाँ वो राह पा रहा तेरे साए में ये दिल तसल्ली पा रहा हर जख्म तेरे लब से मेरा दुल ही जा रहा तुझे चोट दे के हंसते हुए लोग जा रहे।
प्रिय मित्र, सचमुच में परमेश्वर का संदेश हमारे जीवन में एक नई आशा प्रदान करता है। इस आशा में आगे बढ़ने के लिए आप हमारी संस्था द्वारा चलाए जाने वाले डाक द्वारा निःशुल्क बाइबल पाठ्यक्रम में शामिल होकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए जल्द ही पत्र द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा पता नोट कर लें, महिमा के वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार ध्यान से सुने, महिमा के वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। फ़ोन द्वारा संपर्क करने के लिए हमारा नंबर है 09835983759। नंबर पुनः मिला लें 09835983759। घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है, अतः हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको सोनाली का नमस्कार।